أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بلقاء محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحسن في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي به مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وجعلنا من الجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلق الله لكم من خلق.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. Yesterday we talked about the human beings and the creation of the human beings. Allah subhanahu wa ta'ala has indicated that the one who created you, he says that وَخَلَقَ الْإِنسَانَ رَئِفَ إِنسَانَ or the human being has been created weak. Today I just want to continue about the human needs according to this one particular surah and the other verses in the Holy Quran. There are many different verses that talk about the human needs, and Allah subhanahu wa ta'ala in this particular surah he says وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا and we have created you as pairs and we are in need of therefore of a partner, and we are human beings. As human beings, we are social animals. Madani Sabah, as in Arabic and in Farsi, we have educated the term Madani Sabah. We like living societies and we form groups, and we always live in groups. But Allah subhanahu wa ta'ala says that we have created you as partners. Marriage is a human need. And unlike some of the other religions, Islam has encouraged on getting married, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam he says that marriage is my practice, and nikah min sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Whoever refrained from getting married has disobeyed or has gone against my sunnah, like has gone against my practice. Falaysa minni, he is not from me, meaning he is not one of my followers, he is not a true Muslim. I'm Alayhi Musalam, if you look at the books on nikah, on the marriage, the I'm Alayhi Musalam have said so many hadith. In fact, one of the highest number of traditions in the chapters, in the fifth chapters we have, there are 30 volumes of Asaib al-Shia, there will be something like 5 volumes on hadith, you know, a hadith on namaz, something like 3 or 4 volumes on hajj, and 2 full volumes on Kitab al-Nikah. Can you imagine how many ahadith we have on marriage? All the issues pertaining to marriage and regarding the marriage. Allah subhanahu wa ta'ala has highly emphasized in the Holy Quran. There are many, many verses that describe the human need of marriage. Now, especially in these countries, Allah subhanahu wa ta'ala says that I gave you the needs and I gave you the halal means of fulfilling your needs. So get married. And your rizq, in our, you know, our societies, we say that once you are financially established, that's when you should get married. Allah subhanahu wa ta'ala says, no, get married and you will be financially established. We, you know, go the opposite direction of Allah subhanahu wa ta'ala. Our logic is quite the opposite. Our society, if you go, you know, if a boy makes a proposal, they say, what job do you have? Where is your house? What is your bank balance? And all of those conditions, so they're discouraged from getting married. Education, I'm doing anything, but education is the only thing Islam actually encourages. That you should, the only reason you can delay your marriage is education. So that is the only thing. I will not go into the details of ahadith that actually say that. It is mustahab for everyone to get married early, except for the people who want to continue in education. So they should delay because it's a distraction for the people who are sitting on it. And many of the ulama, the great ulama, not all, but many of the great ulama, they delay their marriage until they actually qualify. Al-Ijtihad, you know, most of the Maghadis came. Some of the Maghadis from olden times, when they were in the late 20s or early 30s, that's when they got married, only and only because of education. So that is the only reason you can delay, but all other reasons are wrong for them. for delaying the marriage. All the other reasons are wrong. But even in education, if it becomes that it becomes a situation where you may be indulging into haram, then it is wajib to get married. Nikah can be mustahab. It is generally mustahab. But for a person who may go into haram, it is wajib for him. And otherwise it is mustahab sunnah. Now, the ayat in the Holy Quran that talks about marriage, you know, the love that Allah SWT says that I have placed. You are born with your relations. Your father, mother and all the relations, you are born with them. You don't choose your relations. Allah SWT says you choose a partner. And Allah SWT says, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً. Allah SWT says, it is I who place that deep love between husband and wife. He says, that is the relationship that you choose and I place the love. Now look at the verse that Allah SWT describes the relationship. He says, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. This is the beauty of Islam and the Holy Quran. Allah SWT says that your wives are a means of a dress for you and you are a dress for them. Libas is a beautiful term that Allah SWT uses. Tumhari biviyan tumhara libas hain aur tum apni biviyon ka libas. Now, I want to describe some of the explanations that the ulama have given about the dress. Number one, everyone listen? Number one, the first many explanations that the scholars have given. They say, number one, your dress makes you look nice. Yes? It is the dress that makes a person look nice. Therefore, the partners should make look each other nice in front of their own family. Do not downgrade them, do not degrade them, but make them look nice in your family. For the husband, he should not criticize his wife in front of his wife, and he should praise her and make in such a way, not that, don't overdo it, for either way I'm saying, but do it in such a way that it is shown as respect for each other. Allah SWT says, you're a libas, a dress for each other. So Allah SWT describes in the Holy Quran that you should always make your partner look nice in your family. Both the wife should make the husband look nice in her family and the husband should make his wife look nice in his family. That is number one. Number two, the dress hides and covers all of your deficiencies. If I may have a cut or any wound or anything like that, my whole body is covered because of my dress. It covers all of my deficiencies. That's how the couple should be with each other. They should hide the deficiencies of each other. They should not disclose. Ek dusre ke aib chupa. Libas jo hai na wo sare aib chupate hain. Insaan ke aib chupe bhi hote hain. Ab yahan maghribi duniya ke andar to aib zahir karne ki baatein ho rahi hain. Hamare Islam mein nahi. Libas insaan ke aib chupata hai. Kaha ki miyan biwi ka aisa hona chahiye ki biwi shohar ke aibon ko chupaye, shohar biwi ke aibon ko. Disclose na kare. They should hide the, the deficiencies and the weak parts, not disclose. The other quality of dress is that in winter it covers you from the cold weather and in summer it stops the heat from getting to your skin. Garmiyon ke libas aap log bade bari ki baat pehne se taaki zyada garmi na lage, dhoop se bache, sardiyon mein mota libas pehne rakhe, sardi na lage. Zindagi ke utar chadhav hain, garmi hai, sardi hai, isse bachne ke liye insaan libas pehanta hai. Zindagi ki گرمی اور سردی سے اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کو زندگی کی سختیوں اور زندگی کی آرامیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ایسا نہ ہو کہ سخت وقت میں ساتھ چھوڑ دیں, اچھے وقت میں ساتھ رہیں. دے شوڈ فرام دا اپس اینڈ ڈاؤنس آف دس ورلڈ دے شوڈ پروٹیکٹ ایچ ادر اینڈ شوڈ آلویز بیک ایچ ادر اینڈ سپورٹ دی ادر پارٹنر رادر دین اونلی سپورٹنگ ان دا گڈ ٹائمز اینڈ ناٹ سپورٹنگ ان دا بیڈ ٹائمز. سو ان دا ہاٹس اینڈ کولڈز آف دس لائف, in the ups and downs of this life, in the good and bad times of this life, the husband and wife should support each other. Now there are many other verses I do not wish to go into, but this is one of the things that Allah SWT says, that this is one of the needs of the human life. Now, there are many examples that come to mind when the ulama have, one of the examples that one of the great scholars from the religious seminary in Qom has given. He has given a very nice example, and he says that a person says that I will get married a bit late. He has clean water provided to him and he avoids drinking it. Again, clean water is given to him, he avoids drinking it. Until there comes a time he is struggling that he will have to drink the dirty water because he has no clean water anymore. Hopefully the example conveyed the message. We many times say, I am not getting married yet, not yet, not yet, until it may become that you do something haram, that Allah subhanahu wa ta'ala forbids. When He has given you the halal means, then say, labbaik wa Allah, you gave me halal means, then I will submit to your will and I will get married. And do not indulge into anything haram. Stop yourself and protect yourself. Allah subhanahu wa ta'ala made you. Islam is a religion that made, you know, the marriage halal. Unlike many of the other religions where it is discouraged. Many of the religions like Buddhists and Hindus and even the Christians, you know, now they actually made it, you know, legal for the priest to get married. The corruption comes from not getting married. So the corruption in society is avoiding to get married. Islam says no, form family. One of the most beautiful things that marriage teaches you is sacrifice. Most of us are selfish and we always think about my food, my house, my clothes, I. Islam says no. Don't think about I all the time. We. Even in English, they say my other half. So you always think about the other partner. No, I cannot eat outside. I have someone waiting. So always think about other people. Do not become selfish and always think about I. Let me enjoy myself. Islam is all about caring for other people. एक उर्दू का बड़ा प्यारा शेर है कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो वो या समझा तो सेल्फिश वो ऑलवेज थिंक अबाउट आवरसेल्फ इस्लाम सेज नो सैक्रिफाइस फॉर अदर पीपल लिव अ लाइफ फॉर अदर्स रादर देन जस्ट लिविंग फॉर सेल्फ इवन टुडे इन द अर्ली सेशन वी वर सेइंग दैट इट इज नॉट यू नो हाउ डू यू ascend in your taqwa, in your piety, in your level, in iman. How does it increase? Islam says that you cannot ascend, you cannot go further in iman until you bring the person who was with you in the lower level. Once you go on a higher level, hold the hand of the other person who was in a lower level, bring him to your status and then you will go further. Islam ki ta'limat ye hain ki taqwa mein insan tab tarakki karta hai jab insan jis darje pe pahunch gaya to jo log piche reh gaye the unhe us darje pe le aaya ki jahan pe wo khud tha ab agle darje mein khuda khud ba khud usko pahunchayega wo cheezein jo dusron ko basirat nahi thi wo khud dekhne lagega masoom farmate hain ki insan ye kamal nahi hai ki insan ko basirat ho dusron ke aib talash kare basirat ye hai ki insan ko apne aib nazar aane lage basirat ye nahi hame to bahut log samajhte hain ki hame dusron ke aib nazar aa rahe hain wo aisa hai wo waisa hai wo waisa hai मैं बहुत बसीरत हूँ मैं बहुत मेरी बहुत बसीरत है मैं तो बहुत वाइज हूँ बहुत अकलमंद हूँ जहीन हूँ मुझे सब क्या नजर आते हैं ये जहालत की अलामत है ये बसीरत नहीं ये अंधेपन की अलामत है अपने ऐप नजर आ रहे हैं दूसरों के ऐप नजर आ रहे हैं अपने ऐप नजर आना बसीरत है मासूम फरमाते दुआ मांगो परवरदिगार मुझे इतनी बसीरत दे दे कि मुझे अपने सारे ऐप नजर आने लगे अपने ऐप को देखो कब तक दूसरों के तलाश करते हैं ऐप तलाश ही मायूब है वो कहते हैं कि यू नो डू नॉट स्टे इन फाइंडिंग द फॉल्ट्स ऑफ अदर पीपल दूसरों की खोज में मत रहो कि गलती करे मैं फॉरन पॉइंट आउट करूं इसको बड़ा करूं इसको फैलाऊं मजबूत करूं बदनाम करूं इन नफाक की अलामत है मुनाफत की अलामत है और हमारे यहां के किसी भी कोई ऐप मिल जाए एक बार कहने कह रहे कि मुझे एजीएम बहुत अच्छी लगती है लंदन के लिए भी कौश है इंग्लैंड की एजीएम क्या कहेंगे भी एनुअल जनरल मीटिंग मैंने कहा क्या हमारे की एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है क्यों अच्छी लगती है आप कहने की इसमें सबके ऐप खुलते हैं ना सब आगे दूसरों को लगाए निकाल सब बताते हैं इसका ये था गलती की तो बड़े बड़ी खुशी हो गई मैंने कहा भी ये नफाक की अलामत है बस दूर अगर ना बता देना या फिर हम सुने भी पूरी बात और क्या बता जमा होते हैं दूसरों के ऐप खुलते हैं बड़ा खुशी मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है दूसरों के ऐप ही हमारे होते हैं सब दूसरों के तोहमत लगाते हैं दूसरे को बताते हैं ये अलामत अच्छी अलामत नहीं है ये मगरबी दुनिया के लिए हो कि जहां पे लेफ्ट लिवर राइट का तस्वुर है जहां ऐप तलाशी ऐप जोई ये खुद गुनाह है ऐप जोई यानी किसी का ऐप तलाश करना किसी का ऐप डिस्क्लोज करना ये खुद गुनाह है वो काम मासूम से कह रहा है बोला मैंने गुनाह नहीं किया मैं तो दूसरे का ऐप बयान कर रहा हूं कहीं ये खुद एक गुनाह है जो दूसरे मोमिन का ऐप बयान कर रहा है ये भी गुनाह मैंने नहीं गुनाह किया भाई ये गुनाह कर रहे हो तो गुना मैं दूसरे का बयान कर रहा हूं गुना तो उसका है गुना उसका है आप दूसरे का गुना बयान करने का एक और गुना अपने सर ले रहे हैं हत्ता अपने गुना का इकरार करना इकरार दम्बे दम्बो नाकर एडमिटिंग टू ए सिन इज अनदर सिन एक गुना का इकरार करना एक और गुना है
صرف آپ کے اور خدا کے درمیان میں ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم, میں اس نقطے میں اشارہ کر رہا ہوں. پہلے میں انگلش میں وضاحت کروں, پھر اردو میں سمجھاؤں گا, کیونکہ بہت سے ادراج ہیں وہ اردو میں سوئچ آف ہو جاتے ہیں, بہت سے انگلش میں سوئچ آف کر لیتے ہیں. آپ بہت نہیں کر لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ رہتے ہیں تو انگلش تو آتی ہوگی, روایت بزرگوں کے باقی طرف تو آتی ہوگی. ایڈمٹنگ یور سین از اندر سین. کنفیشن, اسلام ڈز ناٹ بلیو ان کنفیشن. دیر از نو کانسپٹ آف کنفیشن ان اسلام. Even the Prophet and the Imams said, do not come and confess about your own sins to us. There is no confession. We don't have anything like the, you know, the Catholics, and you come and confess, okay, I'll forgive you, give so much donation. Give the donation and, you know, repent. Islam says no confession, there is no confession. Even a person came and confessed to Imam Ali, Ya Ali, I have done so and so sin. He didn't even look up. Allah, this is Islam. Then a person came and said to Imam Ali, he said, Ya Ali, I have committed so and so sin. He was writing and he said, you didn't know about it, leave. He said, no, I knew about it. He said, probably there was a problem. He said, no, there was no problem. Imam Ali is giving him a chance, run away. He said, no, I. He said, I'll look at you tomorrow, go. So the man comes back tomorrow. Ya Ali, you told me to come back tomorrow. I didn't tell you to come back tomorrow. I was letting you go. Go and repent. Tawbah is the biggest door of Allah subhanahu wa ta'ala. No confession, do not confess. That doesn't mean that sin, keep sinning and there is no confession. No. At least tell yourself, I have done this sin. Tell yourself, tell Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows, but you say, Ya Allah, I have committed the sin, forgive me. One of the signs of a mu'min is that even in his old age, he remembers the sins that he committed when he was young. One of the signs of a mu'min. Even in his old age, he remembers the sins that he committed when he was young, so he can repent for the sins that he committed. علامات المؤمن میں سے ہے کہ بڑھاپے میں بھی اسے وہ جوانی کے گناہ یاد آتے تاکہ وہ توبہ کر سکے ان گناہوں کے. توبہ کی توفیق بہت بڑی توفیق ہے. یہ سادی شیرازی پوئٹ ہی سیز ان فارسی, در جوانی توبہ کردن شیوے امرنی. ہی سیز دیٹ ریپینٹنگ وین ینگ از فالوئنگ دا پروفیٹس, ادروائز ان اولڈ ایج ایون اے وولف سیز آئی ناٹ ایٹ میٹ اینی مور. It's a very beautiful example. سادی کہتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا شیوا, بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی کہتا ہے میں گوشت نہیں کھاؤں. کیوں کہتا ہے؟ سارے دانت جھڑ جاتے ہیں, نہ خون جھڑ جاتے ہیں, نہ شکار کر سکتا ہے, نہ دانت سے کھا سکتا ہے. اب میں توبہ کر لیے گوشت نہیں کھاؤں گا. یہ میں توبہ گوشت نہیں کہہ رہا ہوں, مثال ہے. A person came to one of the wukhala of Atala Burjati and he said, Aga, I have repented. He said, what from? He said, I used to play flute in the weddings. He said, do you have it? He said, yes, I have it. Took it out. He said, if you repented, you would break it. He said, but I want to repent. You know, tell me. He said, there's no confession. Just repent. He said, tell me something that I should read. He said, can you play it for me? He said, I don't have any teeth anymore. I can't play it. You know, you have to blow very hard. My lungs are weak. I'm old now. So the reason is because you can't play the flute anymore. So he said, okay, let's do tawbah. Many of us, you know, I can't sin anymore. So let's do tawbah. That is not. Most of you are young. Be vigilant of yourselves. Sometimes when tomorrow you'll be given a big responsibility, you may repent from it because you may have committed a sin. Then you'll feel guilty and you'll feel that I'm not worthy of it. Be very strong with yourself. Be very strong before Allah subhanahu wa ta'ala and say, Ya Allah, I have disobeyed shaitan and I've submitted myself to you. آج کل دیکھیے انسان کی ضروریات تو بہت زیادہ ہیں. میں زیادہ وقت ہوا میں جاتا ہوں سنڈے, اور آج بھی کل آپ لوگوں کو ان شاء اللہ جاب پہ تو ہم روز لے جاتے ہیں. نادر بھائی بہرحال میں ان کو کہہ دوں گا کہ یہ سب سنتے ہیں, بالکل ان کے سواد بھی بدل جاتا ہے کہ یہ سن رہے تھے یا نہیں سن رہے. آرام سے رہتے ہیں. الحمد للہ جتنے بھی لوگ سوال کرتے ہیں ریلیٹڈ ہوتا ہے. ویسے ان کا پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ماشاء اللہ سے اس سال الحمدللہ مجھے ہمیشہ آنے کے بعد خوشی ہوتی ہے جب میں ملتا ہوں. میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ جہاں جتنے بھی لوگ مغرب میں بیٹھے ہوتے ہیں سب اپنے میں اپنا سمجھ کے بات کر رہا ہوں, اور خونی رشتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اسلام نے, رسول خدا نے جو سب سے بڑا رشتہ بتایا وہ ہے ایمان کا رشتہ.
सकता।
लेकिन रसूल खुदा ने सारे जितने भी जो अरबों में चीजें आई थी ना, ये खानदानी तासुब है, नस्ली तासुब है, लिसानी तासुब है, जबान का है, रंग का है, सब तासुब को तोड़ा था। क्या कि तुम सब के सब आपस में आपस में सबको तुम्हें भाई भाई बना दिया है। कुरान कुरान क्या है क्या तुम सब भाई आपस में। लेकिन ये तो ये काला मैं गोरा हूं, उनका गोरे और काले का क्या फर्क है, ये अरब है मैं अजम हूं। कर कोई नहीं, तुम में सब में एक चीज कॉमन है, वो है ईमान। अगर ईमान रखते हो तो तुम सब आपस में भाई हो। सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो ईमान का रिश्ता। मैं अपना समझ के तुमसे बात करता हूं यहां और कभी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं कहीं से और कोई कहीं से नहीं। हमारी अपनी आपस में अपनाइए जब तक ना हो तब तक हमारे यहां आगे तरक्की नहीं होती। इस्लाम के अंदर ये जो सबसे बड़ी चीज है इस्लाम की, यानी इंसानी जरूरियात क्या है, इंसान की जरूरियात है। मैंने अभी एक तरफ इशारा नहीं की जरूरत है, यहां भी आयात के अंदर है वजालना नौमकुम सुबह था इंसान की। अल्लाह कहता है कि देखो मैं तुम्हारे अंदर एक जरूरत पैदा की। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की जरूरत है इसको मार दो। इंसान अपने यू आर सपोज टू डिवाइड योर डे इन टू फोर पार्ट्स, चार हिस्सों में दिन को तकसीम कर दो। कितने घंटे का दिन होता है 24 घंटे का, उसको 600 में तकसीम कीजिए, 400 में तकसीम कीजिए, 6 घंटे के। अब 400 में तकसीम के मासूम फरमाते हैं कि एक हिस्सा आराम का है, एक हिस्सा काम का है, एक हिस्सा इबादत का है और एक हिस्सा इनमें से जो भी या कोई और जायज चीज तुम बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। कुछ आवर नींद के बढ़ा दो, कुछ काम के बढ़ा दो, कुछ इबादत के, कुछ एंजॉयमेंट के, लग्जरी के, हलाल चीजों के तरीके। अब देखिए तस्वुर देखिए, इस्लाम ने पूरा का पूरा कौन सा जगह 6 घंटे इबादत हो, हर चीज इबादत है। यानी कि 6 घंटे मुसल्ले पे बैठे रहे। हमारे दोस्त कहने लगे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप कहां से बात कर रहे हैं। कभी मेरी अम्मी ने मुझे बताया, मैंने कहा भी आपकी वालदा पढ़ी हुई है, कहेंगे वो 6-6 घंटे 8 घंटे मुसल्ले पे बैठी रहती। मैंने कहा भाई ये इबादत है, ये तालीम नहीं है। नहीं उनको कहीं से पता चला नहीं, उन्होंने बताया पर मैं बहुत उनसे कोशिश की तो उनको बात है कन्विंस किया जाए कि कोई दलील हो आपके पास, कोई आयत है, कोई हदीस है, कोई कॉन्सेप्ट है। नहीं घर से सीखा, घर से सीखना बहुत अच्छी चीज है। वालदा की एजुकेशन सबसे जो हमारे पास बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो है मां, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वो मां है। उसके बाद पापा तो बहुत है, सब यहां तो बात करते हैं सबसे पर्दा जो है माए हैं। तो बहरहाल सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो मां है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो मां। अगर इंसान की मुख्य जरूरियात है, खुदा ने मुताल कर देखो तुम्हारी जरूरियात को मैंने दुनिया के अंदर पूरा किया। एक पहले अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मैंने अगर जोर जुग जुग खल किया है, जोड़ों में खल किया है। दूसरा तुम्हारी नींद है, तो खुदा कहता है कि वजह लैला लिबासा, हमने रात को एक लिबास की तरह से खल किया। एक मतलब खुदा कहते हैं मैं सारे पर्दे गिरा देता ताकि तुम आराम कर सको। नींद आती ही तब है कि जब इंसान अंधेरा हो जाए, तारीखी हो जाए। दिन बनाया काम करने को, रात दी नींद भरने को। अल्लाह ने कहा तुम्हें लाइटें ऑफ करते देखो मैं सबसे बड़ी लाइट, इसी आईनी आया थे वो जानना सिराज वहाजा, और हमने सिराज यानी सूरज को वहाजा बहुत ज्यादा दमकता हुआ बनाया था ताकि जिसको काम करने की जरूरत हो उसके लिए रोशनी मौजूद हो। वजह अल्लाह नहारा महाशा, और हमने दिन को काम करने के लिए महाश के लिए बनाया, निकल जाओ अपने रोजी तलाश करने के लिए। सबके सब जानवर जो हैं वो भी निकल जाते हैं, परिंदे भी उड़ जाते हैं घोंसलों से। कुछ ऐसे परिंदे हैं जो रात में, कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ रात के अंदर, ताकि उनका भी सिलसिला चलता रहे। अल्लाह ने कुछ रात के, लेकिन ज्यादातर जो है वो दिन में। कहा वजह अल्लाह नहारा महाशा, हमने दिन को तुम्हारे मुआश के लिए बनाया, तुम्हारी जरूरियात थी, रोजी रोटी कमाना जरूरत थी, हमने दिन बना दिया। आराम करना नींद तुम्हारी जरूरत थी, हमने रात को सबसे बड़ा जो चराग था वो बुझा दिया। हत्ता देखो तुम अपने घर में कुमकुमे लगाते हो, लाइट्स लगाते हो, मैंने भी आसमान के ऊपर इतने सितारे सजा दिए हैं कि अगर तुम बाहर निकलो तो तुम्हें सजावट महसूस। हम भी कितने घरों को सजाते हैं, अल्लाह ने कहा देखो मैंने आसमान को सजा दिया। वज़य्यना ज़ीनत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वज़य्यना समा अल्लाह, मैंने दुनिया के आसमान को कवा के वज़य्यना सितारों से, कवा के कौकब की जमा है, कौकब के सितारे को मैंने आसमान को सितारों से चमका दिया है। और तुम्हारे लिए कितनी बहुत सी चीजें दी हैं कि तुम्हारे लिए उसके अंदर तस्कीन मौजूद हो, तुम्हें सुकून मिले। रात के अंदर इंसान को आराम करने का जी चाहता है, इंसान की तबीयत के अंदर। मैंने कहा मैंने एक साइकिल बनाया है, नेचुरल साइकिल है, आराम का है, खाने का है, पीने का है, जिंदगी की तमाम जरूरियात। कहा जब जरूरियात मैंने दी है तो उन जरूरियात के लिए तुम्हारी जरूरियात को पूरा करने के लिए रास्ते भी अदा किए हैं। अब कितने रास्ते हमारे पास हैं। अब बहुत से लोगों के जहन में सवाल ये आता है कि फिर ये जो अफ्रीका में मिसाल के तौर पे सैलाब आ गया, या पाकिस्तान में सैलाब आया था, या बहुत से और वाकयात हो जाते हैं, तो अल्लाह ने आया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कहता है देखो जितनी अच्छाइयां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं, all the good is from me and the evil is from yourselves. जितनी बुराइयां वो तुम्हारी अपनी अब कहेंगे भाई कैसे समझो है मेरे साथ अगर आप बेसी पर खत्म कर दूंगा अगर आप लोग ज्यादा नहीं सुना अगर आप खत्म कर रहा हूं मुख्य सबसे बात करूंगा ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं करूंगा हमला बहुत सी जरूरियात है इंसानी ह्यूमन नीड्स है अब हम कहते हैं कि भाई अच्छाई अल्लाह की तरफ से है खुद खुदा कहता है हर अच्छाई मेरी तरफ से बुराई तुम्हारी तरफ से है जो दुनिया के अंदर करप्शन आती है हत्या ये जो सैलाब आते हैं हत्या ये जो कहर पड़ जाता है ड्राफ्ट आते हैं ये सारे तुम लोगों ने कुछ किया जिसकी वजह से ये हुआ है अल्लाह कहता तुमने किया अच्छा उन लोगों ने किया था अल्लाह ने कहा देखो मैंने सिस्टम बनाया निजाम बनाया समझो सब लोगों की अल्लाह कहता मैंने सिस्टम बनाया निजाम बनाया अब उस सिस्टम के अंदर मैं इंटरफियर कर सकता हूं हाँ कर सकता हूं करूंगा लाजमी नहीं करूं समझो है मेरे साथ डिवाइन इंटरवेंशन की जो पूरी बहसें हैं आया अल्लाह डिवाइन इंटरवेंशन करता है यानी अल्लाह मुदाखलत करता है कहते मैंने एक निजाम बना दिया जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा जो खुशी करेगा वो नुकसान उठाएगा अब ये क्या है मैं इंटरवीन करूं उसको कोई फायदा पहुंचा दूं मैं करूंगा लेकिन हर जगह नहीं मैंने सिस्टम बनाया हुआ अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर मैं उठती यहां पे आहिस्ते आहिस्ते पत्थर मारती है ये तोड़ना शुरू कर दूं सारी की सारी लाइटें क्या होगा मैं अकेला महरूम नहीं रहूंगा रोशनी से सबके सब महरूम हो जाएंगे अल्लाह ने कहा मैंने सिस्टम बनाया है अगर कुछ लोग जाके कुछ करप्शन करेंगे तो सबको उसका निशाना उसका भुगतना पड़ेगा कुछ लोगों ने जाके एटॉमिक बॉम्ब बनाया गिरा दिया उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा क्या करोगे तुम ही भुगतोगे भी तुम सब तुम रोको ताकि ऐसे अफराद कोई काम न करें भाई अगर आपकी कुरान से मिसाल दे देता हूं खुदा कहता है हर कुछ जितनी अच्छाइयां वो अल्लाह की तरफ से हैं जो बुराइयां वो तुम्हारी तरफ से उसकी मिसाल जो बहुत से उलमा ने लिखी है वो कहते हैं देखिए जमीन के ऊपर जो अर्थ है इसके ऊपर सूरज की तरफ से रोशनी आ रही है सूरज की तरफ से रोशनी आ रही है तो जहां जहां पे भी जमीन रोशन है वो सूरज की वजह से रोशन है अपनी वजह से नहीं जितनी अच्छाइयां हैं खुदा की तरफ से बुराइयां हमारी अपनी तरफ से हैं मिसाल सुनिएगा जितनी जमीन पर रोशनी है वो सूरज की वजह से जमीन की अपनी वजह से जमीन तो तारीख है सूरज रोशनी देता है तो जमीन के ऊपर लाइट हो जाती है जहां जहां पे सूरज रोशनी देता रहता है वहां रोशनी होती है और जहां जहां तारीकी है क्या वो भी सूरज की तरफ से है नहीं वो सूरज की वजह से नहीं है वो जमीन की अपनी वजह से है क्योंकि जमीन सूरज का फेस नहीं कर रही नहीं तो वह क्योंकि जमीन का फेस सूरज की तरफ नहीं है इसलिए वहां तारीकी है इस वक्त हमने हमारे जमीन के हिस्से ने सूरज से अपना रुख मोड़ लिया इसलिए यहां तारीकी हो गई है जैसे सूरज को दोबारा रुख कर लेगी दोबारा रोशनी आने लगेगी जब तक हम खुदा से वाबस्ता रहेंगे नेमतें रहमतें नाजिल होती रहेंगी जब खुदा से टूट जाएंगे तो मुसीबतें आने लगेंगी पता कहता है कि जितनी नेमतें हैं हत्ता मैंने वादियां बनाई हैं किसी मकसद के तहत पहाड़ बनाए हैं किसी मकसद के तहत वल जबाला औथात अवसर कहते हैं औथात जमा है वसत की वसत कहते हैं कील को अल्लाह कहता है कि जिस तरह से तुम अपने कोई चीज बनाते हो उसमें कीले लगा देते ताकि गिर ना जाए चीज तो कहा इसमें मैंने जमीन के अंदर जिस तरह से कीले लगाते हो तो मैंने पहाड़ कीलों की तरह से लगा दी और बाकायदा सुतून है ला करो नहा जो तुम्हें नजर नहीं आते क्या कुछ लोग कहते नहीं सुतून नहीं लगाए बगैर सुतूनों की पूरी कायनात खड़ी कर दी हजार जितने भी आपने बिल्डिंग खड़ी कर रखी है उसकी छत को किसी सहारे की जरूरत है किसी बहुत यानी आपको या वॉल बनानी पड़ेगी पिलर देना पड़ेगा कहीं पे तब खड़ा होगा अल्लाह कहते देखो तो सही ये तुम्हारी छोटी छोटी सी छतें तुम बनाते हो उसको सहारों की जरूरत होती है मैंने इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया उसमें कोई सहारा नहीं है लेकिन तुम्हारे ऊपर गिरता भी नहीं है या फिर मेरी कुदरत के मुकाबले में खड़े हो जाते हो तकब्बुर करते हो मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा अल्लाह की इबादत नहीं करूंगा लापरवाही करूंगा या मेरी कुदरत देखो तो सही अगर मैं तुम्हें हलाक करना चाहूं तो एक लहजे में खत्म कर दो ये ऑक्सीजन बंद हो जाए अभी जो अमेरिका ने एक बम बनाया वो ताकि भी हम अफगानिस्तान में गिराएंगे 500 मीटर तक जो है वो ऑक्सीजन जो है खुश हो जाएगी इंसान सांस घुट के मर जाएगा अभी क्या वो शैतानी काम जो है जितना हो सके लोगों को चले चले जिसके लिए भी हो दहशतगर्दों के लिए बुरी चीज है मैं लेकिन कहता लेकिन वेपन बन गया उसके अंदर कितने इनोसेंट भी लोग मरेंगे जंग फौज इस्लाम में सब इसकी मदम्मत ही गई तब तक कि जितना होगा रसूल खुदा हमारे मुसलमान कितने सब कानून बनाते हैं जंग के लिए फौज के लिए इसीलिए हमारे फुकहा सबके सब कहते हैं कि हमारे यहां जिहाद बगैर मासूम की लीडिंग के हो ही नहीं सकता जब तक कि मासूम नुमाइंदा ना आए तब तक कोई जिहाद इब्तदाई नहीं कर सकता ऑफेंसिव वॉर हो ही नहीं सकती सिवाय मासूम नुमाइंदे कितना बड़ा नजरिए हमारे फुकहा का नजरिए क्योंकि वो जानते हैं ऑफेंसिव वॉर जब करनी होगी तो उसके अंदर कितनी शरायत है किसका लिहाज रखना होगा इमाम जमाना आने के बाद उन्हीं चीजों पे बैत लेंगे कहेंगे बैत करोगे मेरी जिस इलाके में जाओगे मसूरात से बेहरमती नहीं करोगे बूढ़ों को अजियत नहीं दोगे बच्चों को कत्ल नहीं करोगे सारी वही शरात लगाएंगे जब साहिबान लोग कहेंगे मौला ये तो हमें मालूम है कम मालूम है लेकिन फिर भी इन्हीं शरात को तुम ही तोड़ोगे इसलिए बैत करो इन शरात पर कसम खा के कहोगे इनकी मुखालफत नहीं करोगे आपने बहुत किया उन्हीं छोटी बुनियादी चीजों पर हमारी बहुत सी जरूरियात है, यहाँ सवाल जवाब भी तुम्हें सवाल हो चुके हैं। परवरदिगार हम सब की तौफीकात के अंदर इजाफा फरमा, हमें दीन पे अमल करने की तौफीक हिदायत फरमा, हम सब की आकबत का खैर फरमा, साहब जमाना जैसा लोगों में ताजील फरमा। परवरदिगार जहां जहां मोमिन बसरे सबके जान माल दारू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार बहरैन के बाजरा के मोमिन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जितने अफराद इन सलमा से दुआ की सबकी दुआ को मुस्तजाब फरमा। जो मोमिन भी औलाद सबको औलाद हिदायत फरमा। मकरूजों के कर्जों का अदा फरमा। परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा। इस मकसद को जिंदगी तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार जितने अफराद यहां मौजूद है सबकी दुआओं को सजा फरमा। हमारे सबके मरहूमों की मौफरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक्क मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। एक सूरह फातिहा की मतलब अखलास पढ़ के जो हाजिर अमेरिका के मरहूमीन के लिए खुसूसन जिन्होंने आज तक कोशिश किया था और इफ्तार वगैरह का सिलसिला उनके मरहूमीन को सलाम। Yeah.